नमस्कार श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सिद्धार्थ।
और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच कल लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान में खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के चौथे दिन आज दूसरे दौर में 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने इंग्लैंड के डेनियल इवांस को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी ने मैक्सिको के जोड़ीदार मिगुएल वरेला के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। और पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 अगस्त से श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, और इस समय बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है और जो स्थिति फिलहाल बन रही है, भारत एक मजबूत स्थिति में है और 141 ओवर का खेल हो चुका है। फिलहाल 7 विकेट पर 564 रन भारत ने बना लिए हैं। एक काफी बड़ा स्कोर भारत का अगर हम देखें तो यहां पर बन चुका है और इस जो पूरे बड़े स्कोर के जो नायक रहे हैं वो हैं शुभमन गिल, जिन्होंने 265 रन, जी हाँ 265 रन की शानदार पारी खेली है। आज जिस तरीके से उन्होंने पूरा आज इस मैच को संभाला है वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज रविंद्र जडेजा ने उनका साथ दिया, 89 रन की पारी खेली और वॉशिंगटन सुंदर ने भी 42 रन बनाए और फिलहाल आकाशदीप मैदान पर आ चुके हैं, अभी उन्होंने खाता नहीं खोला है। और सबसे पहले बात शुभमन गिल, जो कप्तान अभी भी 265 रन पर नाबाद हैं। उत्तरा, बहुत बड़ी उपलब्धि और जिस तरीके से शुभमन ने ये खेल दिखाया है, जो दबदबा बनाया है, क्या कुछ कहेंगे कि सोर जा रहा है ये मैच?
देखिए, जितना रन बना है उसमें अभी दूसरा ही दिन है, इस हिसाब से तो भारत की ही तरफ जाता लग रहा है। और अगर हम शुभमन की बात करें तो उन पे कभी किसी को डाउट तो रहा नहीं था कि उनमें टैलेंट है या नहीं है। बीच में स्पेशली ओडीआईस में उनका थोड़ा सा फॉर्म जरूर गड़बड़ हुआ था, पर उनसे कभी ये किसी ने ये नहीं कहा था कि वो कभी कि उनका फॉर्म खराब है, तो वो खिलाड़ी खराब है। हमेशा उनको एक भावी कप्तान के रूप में और एक फ्यूचर लेजेंड के ही रूप में उनकी बात की गई है। जब वो जूनियर में खेल रहे थे तभी से लगातार उनकी बात की जा रही है। हालांकि कप्तानी का दबाव बहुत अलग होता है, पर जिस तरह से हमने पहले टेस्ट में भी देखा और अब दूसरे में भी देख रहे हैं, बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि कम से कम उनकी बैटिंग को अभी पहले दो टेस्ट में तो अपने कप्तानी के छोटे से कार्यकाल में उसने असर नहीं की, इफेक्ट नहीं किया है। जितना प्रेशर होता है भारत में किसी भी क्रिकेट कप्तान के ऊपर, और आप इंग्लैंड जैसी सीरीज के लिए गए हो, टेस्ट मैच है, तो अभी तक तो कम से कम उन्होंने उसको अपनी बैटिंग पे हावी होने नहीं दिया है। और जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है अगर साथ में खेलने वाला खड़ा रहे तो 300 भी वो टच कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो बहुत बड़ी उम्मीद है। और जैसा कि ये कहावत भी है कि फॉर्म इज टेम्परेरी और क्लास इज परमानेंट, तो आज का जिस तरह का खेल शुभमन गिल ने दिखाया है, फिलहाल 266 रन बना चुके हैं और एक भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है और जो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो क्रिस वोक्स ने 2 विकेट लिए हैं, ब्राइडन कार्स ने 1, जॉश टंग ने 1, बेन स्टोक्स ने 1, शोएब बशीर ने 1 और जो रूट को 1 विकेट हासिल करने की सफलता मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हो चुके हैं और यहां पर हमारे लिसनर्स को हम ये बता दें कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो हो वो ना सिर्फ बाकी चीजों के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि वहां टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थित क्वींस पार्क ओवल मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि इस मैदान ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का जिस तरह से उदय देखा और वेस्टइंडीज के ब्रांड लारा के लिए इस मैदान में इस जिस तरह की आधारशिला रखी गई, ये एक खास बात है जो हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते थे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की महिला टी20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच कल लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इस बीच ब्रिस्टल के काउंटी मैदान में खेले गए दूसरे मैच में कल भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की महिला टी20 क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। अगर टीम इंडिया कल का मैच जीत जाती है तो वो पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को अपने नाम करेगी। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट।
टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां एक तरफ पुरुष टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेल रही है, वहीं महिला टीम भी टी20 सीरीज में अपना दमखम दिखा रही है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच खेले हैं और दोनों में उन्होंने जीत दर्ज की। अब इन दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में कल खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की निगाहें एक खास उपलब्धि को अपने नाम करने पर होगी। अगर टीम इंडिया तीसरे टी20 को जीत जाती है तो वो पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को अपने नाम करेगी। अभी तक टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ एक बार भी टी20 सीरीज नहीं जीती है। टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में अच्छी बात ये है कि उनके सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। उम्मीद है कि टीम इंडिया कल ओवल मैदान में इतिहास रचने की कोशिश करेगी। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
उत्तरा, कल टीम इंडिया इतिहास रचने के लिए मैदान पर उतरेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ये उम्मीद हम सबकी यही है कि जिस तरह से पहले 2 मैच में खेला है उसी को आगे कंटिन्यू करें। बैटिंग हमारी बहुत अच्छी जा रही है, हालांकि दोनों ही मैच में थोड़ी सी शुरुआत में हल्का सा वॉबल हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद संभाल के आगे लेके गए हैं और उसके बाद गेंदबाजों ने जिस तरह से कमबैक किया, तो उम्मीद यही है कि 5 मैच हैं, तीसरा मैच भी जीतेंगे तो बाकी जो 2 मैच हैं उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप फ्री होके खेल सकते हैं। हालांकि जिस तरह का जो मेंटेलिटी है इस टीम में, कम से कम मुझे नहीं लगता कि 3 के बाद वो ढीले पड़ेंगे, वो 5-0 के लिए ही जाएंगे। पर इंग्लैंड को कम आंकना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की वो टीम है, जिस तरह का उसमें एक्सपीरियंस है, हालांकि उनके कप्तान नहीं खेलेंगी तो वो थोड़ा सा उनके लिए झटका है इंजरी के बाद। पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो 2 ऐसी टीमें हैं विमेंस क्रिकेट में जिनको कम आंकना बहुत बड़ी गलती हो सकती है।
बिल्कुल, तो हम सब की निगाहें कल इस टूर्नामेंट पर लगी होंगी। बिहार के राजगीर में अगले महीने 29 अगस्त से होने वाली एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा लेगी। हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण नालंदा जिले के राजगीर में खेला जाएगा। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार में 29 अगस्त से आयोजित होने वाले एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम को भाग लेने की अनुमति मिल गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद टकराव की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर शंका की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों को वीजा क्लियरेंस देने की अनुमति दे दी है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने इस संबंध में बताया कि हॉकी इंडिया की ओर से प्राधिकरण को आधिकारिक सूचना दी गई है। बिहार पहली बार पुरुष एशिया कप हॉकी की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, जापान जैसी हॉकी खेलने वाली एशिया के 8 प्रमुख देश भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में 7 सितंबर तक आयोजित होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
जी हाँ, तो भारत के पास एक और मौका होगा अपना दमखम दिखाने का एशिया कप में।
बिल्कुल, और एशिया की टॉप टीम है, लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीत के आई है, उम्मीदें बहुत ज्यादा होगी भारतीय टीम से। और पाकिस्तान के आने से थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा नहीं मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि लगातार उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। और भारत पाकिस्तान चाहे टीमों में कितना भी अंतर आ जाए लेवल में या जो भी है, पर इमोशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान हमेशा स्पेशल होता है। तो अगर पाकिस्तान की टीम भी आ रही है तो मामला इंटरेस्टिंग ही होगा वहां पे।
और नजर डालते हैं विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता पर, जहां चौथे दिन आज दूसरे दौर में छह बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने इंग्लैंड के डेनियल इवांस को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त जेनिक सीनर और अमरीका की बेन शेल्टन भी आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स पर नजर डालें तो इगा स्वेटिक और सोफिया केनिन अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पुरुष डबल्स की बात करें तो भारत के एन श्रीराम बालाजी ने मैक्सिको के जोड़ीदार मिगुएल वरेला के साथ दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अब उनका मुकाबला कल अर्जेंटीना के जेब्लोस और स्पेन के ग्रेनुलर्स की जोड़ी से होगा। तो फिलहाल विंबलडन में बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, और जिस तरह से पहले दो राउंड्स में हमने उलटफेर देखे हैं, काफी बड़े नाम हैं जो बाहर हुए हैं, चाहे वो मेडवेडेव हों या ज्वेरेव हों। तो वुमेन्स में पाउलिनी बाहर हुई हैं, तो इंटरेस्टिंग है, और बहुत साफ नजर आ रहा है कि जो टॉप के खिलाड़ी स्पेशली मेन सेक्शन में जो रिटायर होते गए एक एक करके, तो अब जोकोविच को छोड़ के और अल्काराज जिनको उनका सक्सेसर माना जा रहा है, उसके अलावा किसी का भी कुछ भी अब कंफर्म नहीं है। बहुत ही खुला हुआ
हो गया है, फॉर्मेट हो गया है। और यहाँ पर एक और खिलाड़ी अपनी सुर्खियां बटोर रहा है, वो है जुआओ फोनसेका, जिन्होंने विंबलडन के तीसरे दौर में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। सुनते हैं उनकी इस विशेष कामयाबी पर ये रिपोर्ट।
ब्राजील के 18 वर्षीय जुआओ फोनसेका ने विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। 3 घंटे से ज्यादा समय तक चले एक रोमांचक मुकाबले में फोनसेका ने अमेरिका के जेनसन ब्रुक्सबी को 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 से हराया। अपने करियर के सिर्फ चौथे टूर लेवल इवेंट में फोनसेका ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता दिखाई। मैच 3 घंटे से ज्यादा चला और फोनसेका ने 50 विनर्स लगाकर दर्शकों को रोमांचित किया। उनकी जीत ने उन्हें 2011 में बर्नार्ड टॉमिक के बाद विंबलडन में तीसरे दौर तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना दिया। फोनसेका का अगले दौर में मुकाबला निकोलस जैरी के साथ होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
बात करते हैं पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, 21 अगस्त से श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, कश्मीर है।
श्रीनगर के खूबसूरत डल झील 21 अगस्त से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी करने को तैयार है। 3 दिवसीय फेस्टिवल में 5 खेल होंगे, जिसमें कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट शामिल होंगे। प्रतियोगिता में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। श्री मांडविया ने कहा कि यह खेल सरकार की प्रतिबद्धता और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर प्रदान करने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एशिया में वाटर स्पोर्ट्स में भारत अच्छी स्थिति में है। डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल उभरती प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार करने में मदद करेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, उत्तरा, जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है वो भी श्रीनगर की डल झील में, कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा खिलाड़ियों के लिए और भारत की जो स्थिति है वो किस तरह से होगी?
देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जो है वो वाटर स्पोर्ट्स में है। स्विमिंग अकेला ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक खिलाड़ी 10-10 मेडल जीत सकता है, तो ओलंपिक की तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरी चीज जो लगातार हम कहते हैं कि श्रीनगर को बाकी देश से जोड़ने का एक तरीका है, तो ये लोगों को बताने का एक तरीका है कि श्रीनगर कितनी खूबसूरत जगह है।
बिल्कुल, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभरात्रि।